रुद्री और ईशानी वापस मुंबई लौट रही थी। विक्रांत ने उनका काम तमाम करने के लिए एक लड़की को उनके पीछे लगा रखा था। जब वो पहाड़ी इलाके के आसपास पहुंचे, तब किसी ट्रक और एक बड़ी गाड़ी ने आकर रुद्री और ईशानी की गाड़ी को बुरी तरह ठोक दिया था। एक्सीडेंट काफी भयंकर था। रुद्राक्ष ईशानी के साथ बात कर रहा था, जब उसने अचानक गाड़ियों के टकराने की आवाज़ सुनी तो वो बुरी तरह घबरा गया। ऊपर से ईशानी भी कोई जवाब नहीं दे रही थी। रुद्राक्ष चिल्लाकर बोला, वहाँ सब ठीक है ना ईशानी? जवाब दो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम और मॉम ठीक हो ना ईशी? प्लीज आंसर मी। सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था। रुद्राक्ष जल्दी से दौड़ के नीचे आया। मोक्ष अभी भी किसी फाइल पर काम करते हुए लिविंग रूम में बैठा था। उसने रुद्राक्ष को सीढ़ियों से भागकर आते हुए देखा तो वो भी घबरा गया। मोक्ष उसके पीछे आते हुए बोला, क्या हुआ रुद्राक्ष, आप इस तरह भाग क्यों रहे हो? मुझे अच्छी वाइब नहीं आ रही है। शायद मॉम और ईशानी का एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हारी गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है ना? पता करो आखिरी बार गाड़ी कहाँ लॉकेट हुई थी? रुद्राक्ष ने जल्दबाजी में जवाब दिया। मोक्ष भी उसके पीछे जाने लगा। जाने से पहले उसने अपना लैपटॉप साथ में ले लिया था। रुद्राक्ष गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मोक्ष उनकी लोकेशन निकाल रहा था। आप श्योर हो ना कि उनका एक्सीडेंट हुआ है? हो सकता है आपकी कोई गलतफहमी हुई हो भाई, मोक्ष ने कांपती आवाज़ में पूछा। मैं ईशानी से बात कर रहा था, अचानक वहाँ शोर होना शुरू हो गया। ईशानी और मॉम दोनों ही कोई जवाब नहीं दे रही थी। जिस तरह से वहाँ आवाज़ आ रही थी, यही लग रहा था कि कोई एक्सीडेंट हुआ है। तुम बताओ वो कहाँ पर है? रुद्राक्ष ने भारी आवाज़ में कहा। उसका दिल बैठ जा रहा था। वो लोग लोनावाला और मुंबई के मिडवे में थे। मैं पुलिस को कॉल करके वहाँ भेजता हूँ, मोक्ष ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। उसके बाद मोक्ष ने पुलिस को कॉल करके लोकेशन भेज दी थी। एक्सीडेंट काफ़ी बड़ा और भयंकर था। लगभग दो घंटे के बाद मोक्ष और रुद्राक्ष लोकेशन पर पहुंच चुके थे। पुलिस उनसे कुछ ही देर पहले आई थी और वहां खोजबीन कर रही थी। रुद्राक्ष और मोक्ष दौड़कर वहां गए। पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोकना चाहा तो रुद्राक्ष बोला, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, अंदर मेरी वाइफ और मॉम वहां फंसी हुई हैं। उन्हें कुछ हो जाएगा, पहले आप उन्हें हॉस्पिटल पहुँचा दीजिए, ऑलरेडी देर हो गई है। इंस्पेक्टर ने मौके की नज़ाकत समझी और रुद्राक्ष को अंदर आने दिया। रुद्राक्ष और मोक्ष दौड़कर गाड़ी की तरफ गए। वहाँ सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। गाड़ी एक बड़ी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़ चुकी थी। ऊपर से काफ़ी ज़्यादा हिस्सा डैमेज भी हो गया था। क्रेन की मदद से गाड़ी को नीचे उतारा गया। मोक्ष और रुद्राक्ष ने देखा, वहाँ गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर रुद्री का पैर फंसा हुआ था। उसके सिर से भी बहुत सारा खून बह रहा था। ईशानी कहाँ है? रुद्राक्ष ने नम आँखों से कहा। इंस्पेक्टर उनके पास आया और बोला, क्या इनके साथ कोई और भी मौजूद था? दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है। एक्सीडेंट से पहले अगर वो बाहर भी कूदी होगी तो भी यहाँ कोई नहीं है। गाड़ी में भी सिर्फ आपकी मॉम ही मिली है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर रुद्राक्ष कुछ कदम लड़खड़ा गया। मोक्ष ने उसे संभालते हुए बोला, प्लीज़ काम डाउन भाई, ईशानी यहीं होगी। अंधेरा होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, सुबह तक वो भी मिल जाएगी। रुद्राक्ष ने मोक्ष की बात का कोई जवाब नहीं दिया, मानो वो उसकी बात सुनकर भी ना सुन रहा हो। उसकी आंखों से आंसू का कतरा बह गया और वो सूनी आंखों से गाड़ी की तरफ देख रहा था। पहाड़ी पर एक कांस्टेबल चढ़ा हुआ था जिसके हाथ में टॉर्च था। वो ऊपर से चिल्लाकर बोला, साहब इधर एक दुपट्टे का टुकड़ा मिला है, लगता है साथ में कोई और भी था जो पहाड़ों से नीचे खाई में गिर चुका है। रात को मिलना नामुमकिन है, शायद सुबह तक डेड बॉडी मिल जाए। एक पल के लिए वहाँ खामोशी छा गई। रुद्राक्ष पूरी तरह सुन हो गया था। उसे आसपास ना तो कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ सुनाई दे रहा था। ऐसे लग रहा था आसपास की दुनिया चल रही थी, लेकिन वो वहीं पर रुका हुआ खड़ा था। अचानक रुद्राक्ष का मोबाइल बजा, जिसकी वजह से उसका ध्यान टूटा। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ विक्रांत खुराना थे। विक्रांत ने कॉल पर कहा, उम्मीद है अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी। कहा था ना मैंने तुम्हें, खुराना फैमिली को छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। जहाँ कहीं भी हो चुपचाप वापस घर आ जाओ। तुम्हारी बहन को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अब मेरी है। बाकी जो इस दुनिया में नहीं रहा उसका शोक मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी भी वक्त है, वापस आ जाओ, वरना जो बचा कुचा है वो भी ख़त्म कर दूंगा। अगली बारी मोक्ष की होगी। रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा और कॉल कट कर दिया। उसकी आंखें सर्द हो रही थी और वो गुस्से में तेज़ सांसें ले रहा था। ये सब विक्रांत का किया धरा था। रुद्राक्ष वहां जोर से चिल्लाया, उसकी आंखों में आंसू थे। मोक्ष उसका दर्द समझ सकता था। वो रुद्राक्ष के पास गया और उसको अपने सीने से लगा लिया। रुद्राक्ष रोते हुए बोला, तुम लोग सही थे, बिल्कुल सही। मैं उन लोगों से प्यार और अपनेपन की उम्मीद कर रहा था जिनकी फितरत में ही काटना है। ये सब उन्होंने किया है, मैं बर्बाद कर दूंगा उन सबको देखना। मोक्ष कुछ नहीं बोला, उसकी आंखों में भी आंसू थे। रुद्री को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, उसके साथ रुद्राक्ष और मोक्ष भी हॉस्पिटल चले गए। ईशानी का सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका था। ईशानी और रुद्री के एक्सीडेंट को लगभग एक हफ्ता बीत चुका था। इस एक हफ्ते में ना तो रुद्री को होश आया था और ना ही ईशानी की डेड बॉडी मिली थी, फिर भी पुलिस ने उसे मरा हुआ समझ लिया था। रुद्राक्ष इस बीच रुद्री के पास से हिला तक नहीं। ईशानी के जाने का गम वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर एक तूफान समेटे हुए रुद्राक्ष बिल्कुल शांत था। सुबह के वक्त रुद्राक्ष रुद्री के पास बैठा हुआ बस उसी को देखे जा रहा था, तभी मोक्ष वहां पर आया। मोक्ष ने रुद्राक्ष के पास आकर धीमी आवाज में कहा, कुछ ही देर में रिशानी के कीस की नेक्स्ट हियरिंग है। ईशानी की मौत की खबर बाहर आ चुकी है और सब जानते हैं कि वो रिशानी की बहन थी। इस इंसिडेंट के बाद कोई भी बयान देने के लिए आगे नहीं आ रहा है। हमारा केस पूरी तरह कमजोर पड़ चुका है, ऊपर से ईशानी भी नहीं है। दीपिका जी की भी हालत ठीक नहीं है, वो इस मामले में आगे नहीं आना चाहती। क्या मैं इस केस को क्लोज करवा दूं? रिशानी को अगर कोई सच में इंसाफ दिलाने की जिद पर अड़ा था तो वो ईशानी थी। अब तो वो खुद इस दुनिया में नहीं रही थी, तो उसकी इच्छा या ख्वाहिश किसी के लिए क्या मायने रखती थी? मोक्ष की बातें सुनकर रुद्राक्ष के दिमाग में ईशानी की यादें ताजा हो गई, जब वो हर बात पर उससे बहस करने लगती थी। ईशानी की आवाज रुद्राक्ष के कानों में गूंज रही थी, आपको नहीं पता रुद्राक्ष, मेरी बहन ने कितना कुछ झेला है। आपने अभी तक अपनी बहन का असली चेहरा नहीं देखा है। जिस दिन पता चलेगा ना, तो आपके पास पछताने तक का मौका नहीं होगा। शायद हमारे बीच में इतनी दूरियां आ जाएगी कि हमें एक दूसरे का चेहरा तक देखना नसीब ना हो। जिस दिन आपके सामने सच आए, तब हमें बात तक करने का मौका ना मिले, पर दिल में आपको भी इस बात का एहसास जरूर होगा कि मेरी बहन की मौत जाया नहीं हुई। मैं उसे इंसाफ दिलाकर रहूंगी। चाहो तो आप मुझे छोड़ सकते हो, पर मैं अपने कदम पीछे नहीं लूंगी। ईशानी के बारे में सोचते हुए रुद्राक्ष की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। रुद्राक्ष की आंखों में आंसू देखकर मोक्ष ने उसके कंधे पर हाथ रखकर भरी आवाज में कहा, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। अगर आज ईशानी जिंदा होती तो वो किसी भी हाल में अपने कदम पीछे नहीं लेती। चाहे केस कितना भी वीक क्यों ना हो जाए, वो हार नहीं मानती। चाहता तो मैं भी यही हूं कि ये केस चलता रहे, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। आज हम कोर्ट में हार ही जाएंगे। रुद्राक्ष ने मोक्ष की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, नहीं, हम नहीं हारेंगे। इतना कहकर रुद्राक्ष वहां से उठकर चला गया।
मोक्ष को रुद्राक्ष की बात समझ नहीं आई। एक पल रुद्री को देखने के बाद मोक्ष भी वहां से चला गया। वो कोर्ट जाने की तैयारी में था, रुद्राक्ष भी कोर्ट के लिए ही निकला था। लगभग तीन घंटे बाद टीवी एंकर टीवी में न्यूज पढ़ते हुए बोली, रिशानी शर्मा केस का वर्डिक्ट आ चुका है। जो लगभग चार साल पहले हुआ था, उसकी सच्चाई आज सबके सामने आई है। इस केस को अगर कोई यहां तक लेकर आया तो वो उनकी बहन ईशानी शर्मा थी, पर अफसोस की बात है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। किसे लगा था कि जो आलिया खुराना लाखों दिलों की धड़कन है, न्यू कमर्स के आइडल हैं, वो इस तरह किसी के मौत की जिम्मेदार होगी? अचानक किसी ने इरिटेट होकर चैनल चेंज किया तो दूसरे चैनल पर न्यूज रिपोर्टर बोली, आलिया खुराना को कोर्ट ने रिशानी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने और उनका अडल्ट वीडियो शूट करवाकर वायरल करने के जुर्म में 12 साल की कड़ी सजा सुनाई है। उन्होंने डायरेक्टली रिशानी शर्मा को नहीं मारा, लेकिन रिशानी शर्मा को सुसाइड के लिए उकसाने और उनका प्राइवेट वीडियो बनाकर लीक करने के जुर्म में दोषी पाते हुए कानून ने उन्हें ये कड़ी सजा दी है। कोर्ट में सबूत के तौर पर रिशानी शर्मा की प्राइवेट डायरी को पेश किया गया, जो कि किसी और के पास नहीं बल्कि रुद्राक्ष खुराना के पास थी। रुद्राक्ष खुराना आलिया खुराना के भाई हैं। खून का रिश्ता होने के बावजूद उन्होंने इंसाफ का साथ दिया, इसकी वजह से लोग उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं। गुस्से में आकर किसी ने टीवी स्क्रीन तोड़ दी थी, वो कोई और नहीं विक्रांत था। विक्रांत पूरी तरह कॉन्फिडेंट था कि आज आलिया बरी हो जाएगी, इसलिए वो कोर्ट नहीं गया था। विक्रांत ने तुरंत रुद्राक्ष को कॉल किया और गुस्से में चिल्लाकर कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया रुद्राक्ष, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम इन सब मामलों से दूर रहोगे, तुमने मेरे गुस्से को बढ़ा दिया है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। गुस्सा तो मेरा बढ़ गया है मिस्टर खुराना, अब देखिए मैं क्या करता हूँ। अब तक खुद को काफी कंट्रोल में करके रखा, सोचा आप सुधर जाओगे, लेकिन पता है मैं ही गलत था। एक गलती कोर्ट में वो डायरी पेश करके सुधार ली है, अगली गलती भी जल्द ही सुधार लूंगा। उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए मिस्टर खुराना, क्योंकि आपका सामना अपने बेटे रुद्राक्ष खुराना से नहीं बल्कि रुद्री सिंघानिया के बेटे रुद्राक्ष सिंघानिया से होगा, सामने से रुद्राक्ष सर्द आवाज में बोला। विक्रांत ने इसकी उम्मीद कभी नहीं की थी कि रुद्राक्ष उनके खिलाफ हो जाएगा, उसने तो अपने नाम से उनका सरनेम तक हटा दिया था। ईशानी जा चुकी थी, लेकिन रुद्राक्ष के बदले की कहानी वहां से शुरू हुई थी। उसने सबको बर्बाद करने की ठान ली थी। देखा जाए तो आलिया का किस्सा एक बार के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। क्या लगता है ईशानी जिंदा होगी? अगर जिंदा है तो रुद्राक्ष उसे ढूंढ पाएगा क्या? कहानी में अभी और भी सस्पेंस बाकी है, तो पढ़कर समीक्षा करते रहिए और कहानी के साथ बने रहिए। अगले पार्ट पर मिलते हैं।